तो आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, आविर्भाव अपीयरेंस है, आविर्भाव दिवस है, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर हमारे संप्रदाय के बहुत ही विशिष्ट प्रमुख आचार्यों में से हैं, जिनका जन्म मामगाछी में हुआ था। मामगाछी मोदद्रुम द्वीप में है, नवद्वीप मंडल हम जाते हैं परिक्रमा में तो एक द्वीप का नाम आता है मोदद्रुम द्वीप। मोदद्रुम द्वीप में मामगाछी नाम का गांव है, जहां पर श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था। श्री वृंदावन दास ठाकुर को गौर पंडित दीपिका में कवि कर्णापुर में श्री वेद व्यास जी का अवतार होता है, और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चेतन चरितामृत में वेद व्यास जी का उनको अवतार बताते हैं, और साथ में कुसुमा पीड़ सखा ब्रज लीला में थे, इन दोनों का ही समावेश है एक में। जब दो तीन अवतारों का बताया जाता है कि इनके भी हैं, इनके भी हैं, श्री राधे रामायण की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम जी की जय, दिखाई नहीं दे रहे कृष्ण बलराम जी। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर उनका जन्म द्वादशी की वैशाखी कृष्ण द्वादशी के दिन यानी कि आज के दिन हुआ था 1519 ईस्वी में मामगाछी में। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर क्योंकि चैतन्य भागवत के रचयिता हैं, तो चैतन्य भागवत बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की है। कुछ लोगों का कहना है कि कुमारहाट में भी उनका जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में तो प्रमाणिक स्रोत से ही पता चलता है कि उनका जन्म मामगाछी में हुआ, मोदद्रुम द्वीप। तो उनके पिता का नाम था, पिता का नाम पिता का नाम था वैकुंठनाथ विप्र और माता का नाम था नारायणी देवी। तो नारायणी देवी ये धात्री थी ब्रजलीला में, कृष्ण की धात्री, और किलिंबिका नाम था इनका, और उनकी जो बड़ी बहन थी अंबिका वो भी धात्री थी। अंबिका बनी मालिनी देवी, शिवास पंडित की पत्नी। मालिनी देवी का भी घर मामगाछी में था पहले, उनका जो माता पिता का स्थान वो भी मामगाछी में था। बाद में फिर शिवास पंडित से जब उनका विवाह हुआ तो फिर वो नवद्वीप आ गई और शिवास पंडित के घर पर रहने लगी, और बाद में हम देखते हैं कि जब नारायणी देवी के जो पति का जब तिरुभाव हो गया तो नारायणी देवी भी जो है फिर शिवास पंडित के घर में आकर रहने लगी। और नारायणी देवी उस समय केवल 4 वर्ष की थी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु शिवास पंडित के घर में उस समय मौजूद थे। तो शिवास पंडित चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद इसको दिया, नारायणी देवी को दिया, और नारायणी देवी जैसी उच्चिष्ट महाप्रसाद उन्हें ग्रहण किया, कृष्ण प्रेम उमड़ पड़ा, और बाद में जब समय आने पर उन्हीं के गर्भ से श्रील वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के रचयिता हैं, और वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के विशेष रूप से जो बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है, अंत लीला का वर्णन विस्तार से नहीं किया है, संक्षिप्त रूप में ही कर दिया है, लेकिन प्रमुख रूप से मूल रूप से आदि लीला में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने बाल लीला का अधिक से अधिक वर्णन किया है, और श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य माने जाते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर, और इनके बारे में और भी बताया जाता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्रीमन महाप्रभु के आदि लीला उनका जो अध्ययन लीला है, यानी कि जब उन्होंने पाठशाला खोली और स्वयं भी गंगादास पंडित के पाठशाला में जाते थे, उसका वर्णन, और श्री महाप्रभु ने जो चांद काजी का उद्धार किया था, और उसके बाद फिर नीलाचल जाना उनका संन्यास लेने के उपरांत, और जगन्नाथपुरी में जो जल क्रीड़ा का वर्णन है नरेंद्र सरोवर में, इन सब लीलाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने, जिनका विस्तार से वर्णन किसने नहीं किया? बाद में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नहीं किया। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट बता रहे हैं, मैं उन्हीं लीलाओं का विस्तार से वर्णन कर रहा हूं जिन लीलाओं का वर्णन विस्तार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया है। और आगे बता रहे हैं यहां पर वृंदावन दास ठाकुर प्रभु कहते हैं कि पतित पावन नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा सुनने पर भी जो पापी उनकी निंदा करता है मैं उसके सर पर लात मारूंगा। तो इस तरह से श्री वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु की निंदा करेगा या नित्यानंद प्रभु में जिसका विश्वास नहीं है उनकी भर्सना करता है तो मैं उसके सर पर लात मारूंगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बड़ा अच्छा है इसके ऊपर समीक्षा दी है श्री चैतन्य भागवत में, जो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, पर ध्यान सुनेगा। इफ ए जेन्युइन डिसाइपल लैक्स दिस क्वालिटी ऑफ जेन्युइन प्योर टॉप मोस्ट डिवोशन एट द लोटस फीट ऑफ हिज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर देन ही कैन नॉट बी कॉल्ड एन एक्चुअल डिसाइपल। Without understanding this fact, sinful hellish people invite inauspiciousness by blaspheming the spiritual master rather than serving him. As a result of the greatly beneficial topic that Thakur Vrindavan Das manifested in this world in order to record in brightly effulgent golden words the proper etiquette of a genuine disciple, the entire world of pure Vaishnavas have accepted Thakur Vrindavan as a Gurudev of the entire Vaishnava community. For those who have slightest doubt born of abominable cheating propensities or sinful motives in this Vedic conclusion, there is no possibility life after life in achieving devotion to Gaur Krishna. Receiving the mercy and inheriting the duties of Nityananda Prabhu, Vrindavan Thakur has acted as Acharya Guru in this world. The ignorant ass-like pseudo-devotees who consider the Prakriti Sahityas or hellish living incarnations of cheating humility as ideal spiritual master simply commit offense at the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. No pure devotee under the shelter of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu will ever associate any way with sinful upsampradayas or opposed to Vrindavan Das Thakur. Yet, if due to past mysteries or misfortune, one happens to face such bad association, then Gaudiya Vaishnavas have no qualification to associate with such dishonest person whose ill-motivated mind has deviated from the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. The community of arrogant persons will take millions and millions of births to understand Vrindavan Das Thakur's causeless mercy. So until their offenses are exhausted, they'll never have the opportunity to receive a kick on the head from the sanctified, all auspicious feet of a pure Vaishnava. So Vrindavan Das Thakur ki prasansha kar rahe hain kyunki unki charan dhuli hai mastak mein padi hai laat marne se. Isse un sab bhakton ka jo ab sampradaya se jude hain, ढोंगी भक्तों का जो अब संप्रदाय से जुड़े हैं उनका उद्धार हो पाए, नहीं तो उनका उद्धार हो ही नहीं सकता है। भले लाखों 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 जन्मों के लिए वो तथागत भक्ति में लगे रहे। फिर आगे बता रहे हैं, इवन द जेन्युइन डिजायर फॉर रिसीविंग द नॉन ड्यूप्लीशियस मर्सी ऑफ अ प्योर वैष्णवा इज अ रेयर कमोडिटी फॉर इग्नोरेंट मंडेन सिंपल पीपल पायस फ्रूटी वर्कर्स और मेंटल स्पेकुलेटर्स लिविंग एंटिटीज हु आर एवर्स टू हरि गुरु एंड वैष्णवा have not accumulated sufficient piety in their previous lifetimes, nor have thousands of their forefathers accumulated sufficient piety, that they are qualified to receive the all auspicious kick from the lotus feet of pure transcendental ultimate benefit awarding lotus feet of Thakur Vrindavan. The moment that dust from the lotus feet of pure Vaishnava will fall on the heads of sinful person, that very moment they will become free from all the material contamination and deceit and thus become proprietors of the wealth of devotional service. तो जब उनकी लात पड़ेगी वृंदावन दास ठाकुर की ऐसे तथाकथित वैष्णवों के ऊपर, भक्तों के ऊपर, तथाकथित भक्तों के ऊपर जब लात पड़ेगी उनके मस्तक पर, उनकी चरण धूली पड़ेगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। वो तथाकथित जो भक्त हैं वो अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे, उनके हृदय में भी भगवत प्रेम जागृत होगा। तो वृंदावन दास ठाकुर की लात का ये प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद भी यही कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने एक चिट्ठी में लिखा, किसी भक्त ने लिखा कि प्रभुपाद को कि प्रभुपाद मुझे अनर्थ बहुत सता रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं एक लात मार के सारे अनर्थों को भगा दूंगा। सेम श्रील प्रभुपाद यही बोल, जो यहाँ पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि उनकी एक लात जब पड़ेगी तो एक लात पड़ने पर क्या होगा, जितने भी अनर्थ हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। इसलिए जो वैश्यो की लात है, वैश्यो की डांट है, ये वास्तव में उनकी कृपा होती है। हमने एक जगह पढ़ा था, किसी शास्त्र में ग्रंथ में लिखा है कि वो व्यक्ति वैष्णव नहीं बन सकता है जब तक वैश्यों की डांट ना पड़ जाए। यानी कि वैश्यों की डांट सुनने के लिए जो तैयार है वो ही वैष्णव बन सकता है। कहने का अर्थ है, जो वैश्यों की डांट सुनने के लिए तैयार नहीं है, वैष्णव की डांट सुनने के लिए तैयार नहीं है, बचा नहीं सकता है, वो कभी वैष्णव नहीं बन सकता। तो वैष्णव की डांट करने के लिए जो तैयार हो चुका है, तत्पर है कि हाँ वैष्णव की डांट खाने के लिए मैं तैयार हूं, और वैष्णव जब डांटता है तो उसको सहन कर लेते हैं, तो ऐसे भक्त जो है वो बहुत जल्दी वैष्णव बन जाते हैं। तो ये लिखा है एक जगह पे, हमें याद नहीं आ रहा कौन से शास्त्र में है, लेकिन हमने पढ़ा था, प्रमाणिक स्रोत से ही पता है। तो वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर बड़ी विशेष कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु की, कि चैतन्य महाप्रभु उनके मुखारविंद से, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके मुखारविंद से अपनी ही कथा सुना रहे हैं श्री चैतन्य भागवत में। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, जिनको हम पढ़ के आपके समक्ष सुनाना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का वर्णन किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला 11वें अध्याय श्लोक संख्या 54 में बता रहे हैं। वृंदावन दास नारायणी नंदन चैतन्य मंगल जेहो करिलो रचन। वृंदावन दास ठाकुर जो नारायणी देवी के सुपुत्र थे, उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से जाना गया। चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने भी उसी समय लिखा था। तो जब पता चला कि लोचन दास ठाकुर ने पहले से ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल दिया हुआ है, तो उन्होंने अपने माता श्रीमती नारायण श्रीमती नारायणी देवी के कहने पर उन्होंने अपना ग्रंथ का नाम बदल दिया और श्री चैतन्य भागवत कर दिया। तो चैतन्य भागवत जो है वो चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत कहला है। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। तो व्यास देव जी ने श्रीमद भागवत में लीलाओं की चर्चा की है, कृष्ण कथा किया है। व्यास देव ने, वही व्यासदेव जो है वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए हैं, और उन्होंने चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया है। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कोयला चैतन्य मंगल जहां श्रवणे नाशे सर्व मंगल। तो वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत की रचना की है वो समस्त प्रकार के अमंगल को दूर करता है। चैतन्य निताय जाते जानिए महिमा जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। चैतन्य भागवत को अगर कोई पढ़ता है तो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वो श्रवण करता है, और भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार लिखिया चेन यहा जानी कोरिया उधार। चैतन्य मंगल में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है जो कि श्रीमद् भागवत के ऊपर आधारित है। चैतन्य मंगल सुने जदि पाषांडी जमण स्नेहा महावैष्णव होए तत्क्षण। अगर महान से महान जो पाषांडी हैं चैतन्य मंगल का श्रवण करेंगे तो क्या होगा, वो भी वैष्णव बन जाएंगे, महान वैष्णव बन जाएंगे। मनुष्य रचिते नारे आयुष्य ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्री चैतन्य भागवत को कहा है वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से उनके लेख के द्वारा। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार आयुष्य ग्रंथ कोरी तेहो तारीला संसार। तो वृंदावन दास ठाकुर के श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में मैं लाखों लाखों बार प्रणाम करता हूं, और उनके अलावा इतना अद्भुत ग्रंथ पतित जीवात्माओं को उद्धार के लिए और कोई नहीं लिख सकता। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला शीलदास वृंदावन। नारायणी ने चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण किया और चैतन्य श्रील उनकी कृपा से श्रील वृंदावन दास ठाकुर उन्हीं के गर्भ से प्रकट हुए। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जार श्रवणे शुद्ध कोयला त्रिभुवन। चैतन्य महाप्रभु की कितना सुंदर लीला का वर्णन किया है और जो भी इसको सुनेगा वो परम पवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातों का वर्णन किया है श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में। चैतन्य भागवत जो है ग्रंथ है, ये जो चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है अगर आप बंगाल में जाएंगे तो प्रत्येक घर में आपको मिलेगा, प्रत्येक गौड़िया वैष्णव के घर में चैतन्य भागवत आपको मिलेगा। चैतन्य चरितामृत नहीं मिलेगा, चैतन्य भागवत मिलेगा। चैतन्य भागवत जो है वैसे बेसिकली गौड़िया वैष्णव के लिए बाइबल जैसा है या बाइबल से भी कहीं अधिक है। जैसे क्रिश्चियन के हर क्रिश्चियन के घर में आपको बाइबल मिलता है, इसी तरह से हर गौड़िया वैष्णव के घर में आपको चैतन्य भागवत मिलेगा। चैतन्य भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सरल भाषा में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया है। उन्होंने बहुत अधिक दर्शन या सिद्धांत नहीं दिया है। उसका कारण यह है कि वृंदावन दास ठाकुर का आशय यह था कि बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति, वहां के यहाँ तक कि ग्रामीण वासी जो हैं, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन कर पाए, ये उनका आशय था। लेकिन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लीलाओं का वर्णन करते हुए साथ साथ बहुत ही गहरा सिद्धांत दिया है श्री चैतन्य चरितामृत। और विशेष रूप से जो विद्वान लोग हैं वो इन ग्रंथों को जब श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा में भी उन्होंने श्लोकों की रचना की है, साथ में बंगाली में अरबी दिए हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की भी उन्होंने प्रकाशन किया और उसका भाष्य दिया, जिसको गौड़िया भाष्य कहते हैं। चैतन्य भागवत के ऊपर भी टीका दी, इसको गौड़िया भाष्य कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का अनुवाद किया, क्योंकि उनके गुरु महाराज को चैतन्य चरितामृत बहुत प्रिय था, क्योंकि इसमें बहुत गहरा सिद्धांत है। और श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि आप लोग सिद्धांत को अच्छी तरह समझें। अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में पहले जो 12 अध्याय हैं उसमें तो केवल तत्व की ही चर्चा हुई है। गौर तत्व क्या है, नित्यानंद तत्व क्या है, गदाधर तत्व क्या है, पंच तत्व क्या है, इसी के बारे में चर्चा है। सृष्टि के बारे में, सृष्टि तत्व क्या है, 12 अध्यायों में केवल सिद्धांत की चर्चा की है आदि लीला में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। 13वें अध्याय से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में वर्णन किया है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग समझें कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु है कौन। तो इस प्रकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर उनके अनुगत भक्तों द्वारा शुद्ध गौर कृष्ण की भक्ति का आचार प्रचार, माया में फंसे जीवों के नित्य मंगल के लिए, स्वयं भगवत प्रेम का आस्वादन करने के लिए हैं। इनका प्रयत्न एवं व्यवहार बाहर से देखने पर कड़वा प्रतीत होता है, सजा के समान लगता है, लेकिन गंभीरता से देखने पर उनकी असीम कृपा की अनुभूति होती है। तो ऐसा लग रहा है कि वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कि मैं लात मारूंगा तो ये बड़ा कड़वा लगता है सुनने में, लेकिन यही उनकी मधुरता है। और आगे बता रहे हैं, इस प्रकार 82 वर्ष लीला करने के पश्चात सन 1511 यानी 1601 ईस्वी में वैशाखी कृष्ण दशमी तिथि को पतित पावन वृंदावन दास ठाकुर जी ने अप्रकट लीला की। तो हम इस बात को और समझाना चाहेंगे थोड़ा सा। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जब बता रहे हैं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं ऐसे तथाकथित भक्तों के ऊपर लात मारूंगा, उनके माथे पर लात मारूंगा, और इस तरह से श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृपा दे रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी भी इस प्रकार कई बार अपने शिष्यों के ऊपर क्रोधित होते थे। और ये भी श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी असीम कृपा थी। जैसे हम जानते हैं कि वृंदावन धाम में जब वृंदावन का मंदिर बन रहा था, कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, तो भक्तों ने चिट्ठी लिखी श्रील प्रभुपाद जी को कि ये मंदिर जो है निर्माण हो चुका है, अब हम श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर के तिरुभाव के दिन इसको खोलें, इसकी ओपनिंग करें। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन पहुंचे तो मंदिर का निर्माण पूरा नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय नियुक्त किया था सुरभि स्वामी को। सुरभि स्वामी अभी आए थे हाल ही में हमारे मंदिर में आए थे, और उनकी वाइफ भी आए थे, किशोरी देवी माता जी भी आए थे, यहाँ भी आए थे। हाँ, तो उस समय वो सुरभि स्वामी थे। तो सुरभि स्वामी उन्होंने ये मंदिर का डिज़ाइन किया था, आर्किटेक्ट थे वो, और जुहू टेम्पल और वृंदावन का टेम्पल, बॉम्बे का टेम्पल, वृंदावन का टेम्पल, उन्हीं का ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया अपने रूम में, तो प्रभुपाद ने पूछा ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन पूरा क्यों नहीं हुआ, और हमने काफ़ी लोगों को इन्विटेशन भी दे दिया है ओपनिंग का। तो प्रभुपाद ने बहुत फायर किया, इतना फायर किया श्रील प्रभुपाद जी ने कि वो पूरा शरीर उनका काम, और उसके बाद वो वापस चले गए। वापस आने के बाद मंदिर में पता चला कि प्रभुपाद ने बहुत डांटा उनको। उसके बाद प्रभुपाद ने कुछ समय के बाद फिर से बुलाया, फिर से डांट पड़ी उनको। ऐसे 3-4 बार 5 बार श्रील प्रभुपाद जी ने बुला कर उनको फायर किया, इतना फायर किया। और प्रभुपाद ने आखिर में पूछा बताओ अब कब खोलोगे टेम्पल, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद रामनवमी के दिन हम खोलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है रामनवमी के दिन फिर खुलना चाहिए पक्का। तो इस तरह से जितने भक्त थे वहां पर मंदिर में वो सब घबराए हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी श्रील प्रभुपाद जी के सामने जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी के सामने जाने में हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की कि प्रभुपाद से कैसे बात करेंगे, और जो भी जा रहा था वो कांप रहा था श्रील प्रभुपाद जी के सामने, बोल नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद इस प्रकार भी डांटा करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी वास्तव में उनका जो क्रोध होता था वो की बड़ी दया थी। एक बार पंडाल प्रोग्राम था और श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति था, वो बहुत तर्क कर रहा था, बहुत बहस कर रहा था उनके लेक्चर के बाद। तो प्रभुपाद को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ नहीं रहा था। फिर प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुआ और प्रभुपाद ने उसको दे धनाने जो है उसको फायर किया पंडाल में ही, स्टेज से ही प्रभुपाद ने उसको बहुत बहुत डांटा है ना। वो व्यक्ति जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो शिष्य थे वो थोड़े से कन्फ्यूज हो गए कि श्रील प्रभुपाद इतना क्यों गुस्सा हुआ है, संत तो क्रोधित नहीं होते हैं ऐसा हमने सुना है, एक श्रील प्रभुपाद इतना। और कई लोग चले भी गए जब प्रभुपाद ने इस तरह से फायर करना शुरू किया पंडाल में से, काफी लोग उठ के चले गए। फिर बाद में प्रोग्राम के बाद प्रभुपाद से अलग से पूछा कि प्रभुपाद हमें समझ नहीं आया आप इतना गुस्सा हो गए, इतना क्रोधित हो गए, इसका कारण क्या है। प्रभुपाद ने कहा जो संत होते हैं वो सागर की तरह है, समुद्र की तरह है, समुद्र के ऊपर बहुत लहरें उठती हैं, समुद्र भीतर से बड़ा शांत होता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे जा रहे हैं कि भीतर से उनके हृदय में कोई भी क्रोध की भावना नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी भीतर से बिल्कुल शांत हैं, लेकिन बाहर से प्रभुपाद जी लोक शिक्षा के लिए कई बार इस तरह से डांटते थे, क्रोधित होते थे। तो इस तरह से एक बार गिरिराज महाराज ने कुकिंग जब किया तो उन्होंने थोड़ा मिर्च डाल दिया, अधिक मिर्च डाल दिया, तो प्रभुपाद उनको बुला के डांट रहे थे कि आपने इतना मिर्च डाल दिया है। तो वो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं नहीं प्रभुपाद शायद ठीक है। तो प्रभुपाद फिर से बोल रहे थे और आखिर में जब गिरिराज महाराज ने कहा प्रभुपाद मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने गलती से डाल दिया मिर्च डाल दिया, तो प्रभुपाद फिर उसके बाद इतने शांत हो गए। उसके बाद प्रभुपाद ने बहुत प्रेमपूर्वक समझाया। तो गिरिराज महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद चाहते थे कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करूं, इसलिए प्रभुपाद जो है इस प्रकार से बार बार जो उसी पॉइंट को उठा रहे थे, उसी पॉइंट को लेकर प्रभुपाद जो है बार बार डांट रहे थे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद भी क्रोधित होते थे और वैष्णव आचार्य भी क्रोधित होते हैं, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी बहुत क्रोधित होते थे है ना, लेकिन हृदय से इनके हृदय से बहुत दया होती थी। जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के बारे में हमने सुना है कि वो लायन गुरु थे, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत कंपैशनेट भी थे। हम देखते हैं कि एक बार जब एक मंदिर का निर्माण हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, विग्रह की स्थापना होने वाली थी, तो एक भक्त को निकाल दिया गया था उस समय आश्रम से, क्योंकि उसके बारे में कंप्लेंट था कि माताओं से बहुत बात करता है वो। तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने बहुत समझाया था, तो वहाँ से उसको निकाला गया था और वो भक्त चला गया। तो फिर जो श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जब आए प्राण प्रतिष्ठा का जब समय हो रहा था, तो उनको याद आया कि वो भक्त नजर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो। तो समझ गए थे कि कुछ हुआ है यहाँ पर, इस वजह से वो भक्त नहीं है, लेकिन पूछा तो मैनेजर से बताया कि उसने इस तरह से गलत हरकत की है और हमने कई बार समझाया भी है, मानता नहीं है, माताओं से बहुत अधिक बात करता है, इसलिए उसको निकाल दिया। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा जब तक वो भक्त वापस नहीं आएगा तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। जाओ उसको वापस लेके आओ। तो भक्त को वापस लाया गया, उसके बाद फिर उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैश्य जो है हृदय से बड़े दयाल होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। बाहर से दिखाई पड़ता है कि बड़े क्रोधित हो रहे हैं, हमें बहुत डांट रहे हैं या हमें डांटते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो वैश्य जिनके हृदय में दया है वो इस प्रकार की दया की भावना प्रकट करते हैं। क्योंकि वैश्यों की जब डांट पड़ती है तो कितने अनर्थों की निवृत्ति होती है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में लिखा है, श्री भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि जैसे वृंदावन दास ठाकुर की लात पड़ेगी तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी। तो ऐसी लात हमें अधिक से अधिक पड़ जाए तो अच्छा है। इसी तरह से अभिराम ठाकुर हुआ करते थे, अभिराम ठाकुर के पास एक छड़ी हुआ करती थी, वो छड़ी का नाम क्या था, विप, जय मंगल। अभिराम ठाकुर के बारे में बताया जाता है कि अभिराम ठाकुर अगर किसी को प्रणाम कर दें तो अगर वो नास्तिक होगा, पाषाणी होगा, तो उसको शायद शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। और शालिग्राम शिला अगर झूठी होगी, कोई कहे मेरे पास शालिग्राम शिला है, दिखावा करे, अगर ऐसी शालिग्राम शिला जो शालिग्राम शिला नहीं है उसको अगर दंडवत करते थे वो, तो वो पत्थर जो है वो टूट जाता था। तो अभिराम ठाकुर के बारे में बताया गया है कि अभिराम ठाकुर किसी के ऊपर कृपा करते थे तो जय मंगल जो छड़ी होती थी उसको लेकर मारते थे, और जैसे वो छड़ी मारते थे तो वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था व्यक्ति। तो ऐसी छड़ी पड़ जाए हमारे ऊपर और कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप सालों साल जप कर रहे हैं, 50 साल 100 साल लगा दिया आपने साधना में, कुछ हो नहीं रहा है, वही अटके हुए हैं, वही जप में सो रहे हैं, कथा में सो रहे हैं, लेकिन एक छड़ी पड़ जाए पीछे से, एक जय मंगल छड़ी पड़ जाए, बस उसी समय कृष्ण प्रेम जाग जाए, है कि नहीं। तो इस तरह की छड़ी, इस तरह का चांटा, इस तरह की डांट हमें निरंतर पढ़नी चाहिए। वास्तव में गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वो शिष्य बड़ा भाग्यशाली है जिसके ऊपर इसको गुरु की डांट सुनने को मिल जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर प्रवचन दे रहे थे और श्रील प्रभुपाद जी उसी सभा में प्रवचन सुन रहे थे। कैलकाटा की बात है। तो वो लेक्चर सुन रहे थे तो पीछे जो है एक व्यक्ति बैठा था, तो वो कुछ कहना चाह रहा था और उसने प्रभुपाद जी की पीठ पे हाथ रखा कुछ बोलना, प्रभुपाद ने पीछे देखा, गलती और किसी की थी लेकिन डांट प्रभुपाद जी की पड़ गई, प्रभुपाद जी को डांट पड़ गई। और शायद भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये कहा कि आपने क्या, शायद क्या आपने क्या डोनेशन दिया है, कि आप दान दिया है, आपने मुझे खरीद लिया है क्या, कि जब ये जो है कथा के बीच में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने डांटा, और लेकिन प्रभुपाद जी को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया श्री भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने, कि ये जो भक्त है ये बहुत अच्छा बोल पाएगा क्योंकि बहुत अच्छा अच्छी तरीके से सुनता है। कई भक्त गए थे शेष शाही का दर्शन करने ब्रज में, एक श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज की कथा बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, हालांकि आधी बात समझ में नहीं आती थी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे जब भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन देते थे तो आधी बातें हमें समझ नहीं आती थी क्योंकि उनका लैंग्वेज बहुत हाई होता था और बहुत फिलोसफिकल डिस्कशन होता था, तो कई बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन प्रभुपाद कहते थे फिर भी मैं बहुत ध्यान से सुनता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि ये शिष्य बहुत अच्छा बोल पाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा सुनता है। तो इस तरह से कई बार हमें गुरु की डांट पड़ती है, वैष्णों की डांट पड़ती है, तो हमें ऐसे डांट सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कई बार भक्तों में झगड़ा हो जाता है कि तुमने मुझे कैसे डांट दिया, या किसी ने कोई डांट दिया तो झगड़ा शुरू हो जाता है या फिजिकल फाइट भी हो जाता है। तो इस प्रकार वैष्णों की कृपा कभी नहीं मिल सकती। वैष्णों की कृपा मिलने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि कब आएगा उस समय जब हमें गुरु की डांट पड़े। कई बार एक बार हमने अपने गुरु महाराज से भी पूछा था, एक बार ग्रेटर क्लास में किसी ने पूछा था हमारे गुरु महाराज से कि गुरु महाराज कई भक्त कहते हैं कि आप बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत लीनियंट भी हैं अपने शिष्यों के साथ। तो हमारे गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ मेरे शिष्य के किस लेवल में है और वो कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा तो कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, सब भाग जाएंगे। तो इसलिए गुरु की डांट भी उसको ही पड़ती है जो डाइजेस्ट कर सकता है कि नहीं। कई जो है ऐसे शिष्य होते हैं उनको प्रशंसा सुनने को मिलता है हमेशा, है ना, ताकि ये न कि इन प्रकार में सेवा में लगे रहे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने लिखा है एक जगह पे जो शिष्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए या प्रशंसा के लिए लगे रहते हैं, तो गुरुदेव से उसको उनको वही मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं? सकपट कृपा। फिर वो कहते हैं कि निष्कपट कृपा क्या है? जब गुरु बताते हैं शिष्य को कि आपके अंदर ये गलती है, आप में ये कमी है। जब ये गुरु इस प्रकार की बातें करते हैं जिसमें शिष्य को डांट सुननी पड़ती है या अपनी गलतियां सुननी पड़ती हैं, ये शिष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन वो शिष्य को अगर प्रशंसा मिलती है इसलिए ताकि किसी ना किसी तरह से वो सेवा में लगा रहे, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सी कृपा कहते हैं? सकपट कृपा। जैसे शिव जी हैं, महादेव हैं, वो भी ऐसे ही हैं। शिव जी का एक संप्रदाय भी है, रुद्र संप्रदाय। लेकिन शिव जी जो है भूत पिशाचों के लिए भी हैं, असुरों के लिए भी हैं, राक्षसों के लिए भी हैं, तो उनके लिए तो तथास्तु चलता रहता है और उनको वरदान देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं कि समाज देर पूजा करते रहें और इस तरह से शिव जी की पूजा करके कुछ तो उनको भला होगा, लाभ होगा। लेकिन असली कृपा क्या है शिव जी की? जब वो कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं और फिर हमें वैष्णव संप्रदाय से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार गुरु की कृपा होती है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। चरण धूलि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। तो ये अवशेष जो है यानी कि चरण धूलि है, ये वास्तव में भक्ति के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत सारा जो है प्रसाद दिया गया था और भक्ति सिद्धांत महाराज ड्रम स्टिक बहुत पसंद करते थे। ड्रम स्टिक जानते हैं आप? जो सब्जी होती है लंबी सी डंडी, क्या कहते हैं उसको? नहीं, कमल, कमल ककड़ी कहते हैं उसको। वो डंडी होती पतली सी लंबी सी, उसको ड्रम स्टिक कहते हैं। जो भी है, तो ड्रम स्टिक बनाया गया था, सब्जी बनाई गई थी, तो सबने सोचा कि वैष्णव का उच्चिष्ट मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा, बहुत सारे आइटम्स रखे गए। तो फिर भक्ति सिद्धांत सारी ठाकुर ने क्या किया, वो ड्रम स्टिक को अगर एक बार चूस लो आप, उसके बाद वो कूड़ा है, उसका रस एक बार ले लो तो वो कोई काम का नहीं होता वो ड्रम स्टिक। तो वो सारा जो है सक करके भक्ति सिद्धांत महाराज ने वो पूरा कूड़ा एक पत्तल में रखवा दिया। उन्होंने कहा कि ये दे दो भक्तों को। तो वो शिष्य समझ गए कि हमारी भोग बुद्धि है और इसीलिए गुरुदेव ने हमारे पर कृपा करके हमें एक कूड़ा दिया है, कुछ महाप्रसाद दिया है, क्योंकि शायद हमें पता चले कि वास्तव में हम लोगों की बुद्धि क्या है, भोग बुद्धि है, हम इंद्र तृप्ति की भावना से महाप्रसाद चाहते थे, बाकी कृपा की कोई आशा नहीं थी हमारी। तो इसलिए आप भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कृपा की है और उन्होंने अपना उचित ये कूड़ा ड्रम स्टिक का जो कूड़ा है वह दिया है खाने के लिए। तो इस तरह से जो है वैष्णव कृपा करते हैं। एक बार मदन मोहन मालवीय जी मठ में गए थे श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से मिलने के लिए कलकत्ता में। तो वो जब गए तो उन्होंने पूछा, सबसे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है हमारा। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, पहले भीतर जाइए, वहाँ पे डीटीस के कुछ बर्तन हैं, उसको आप साफ करेंगे? अरे हाँ करूँगा। वो बर्तन साफ करने गए, तो बर्तन साफ करने के बाद जब वापस आए तो उनसे पूछा, अब बताइए आपका कोई प्रश्न है? तो उन्होंने कहा, मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, जो मैं प्रश्न पूछना चाहता था उस प्रश्न का उत्तर मुझे पहले से मिल गया। तो इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जो है कृपा करते थे भक्तों के ऊपर। एक बार एक सन्यासी जो है बिना परमिशन के नंगा सफारी में निकल गया। जैसे आजकल कई भक्त बिना बताए चले जाते हैं, जी हमें मायापुर जाना है, वृंदावन, हमें जाने नहीं देते, हम बिना बताए चले जाते हैं, फिर आते हैं हफ्ते दस दिन के बाद, फिर दंडवत हो जाता है, फिर सब उसके बाद फिर से सेवा में लग जाते हैं, है कि नहीं? तो बोलते ठीक है आगे से गलती मत करना, वो माफी मांग लेते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, गंगा सफारी पूरी कर ली, पूरे भारतवर्ष में घूम के आए, गंगा सफारी की बड़ी इच्छा थी। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को पता चला कि ये सन्यासी जो हैं बिना परमिशन के गंगा सफारी में निकले। देखिए कितने स्ट्रिक्ट हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, आप समझेंगे। तो वापस आए और कुरुक्षेत्र में जो मंदिर है, कुरुक्षेत्र जानते हैं मंदिर है एक, वहाँ पर व्यास कोड़े मठ के नाम से है, जो कि ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल सामने है। तो वहाँ पर वो सन्यासी आए, दरवाज़ा नॉक किया उन्होंने। तो जब दरवाज़ा नॉक किया तो फिर दरवाज़ा नॉक करने के बाद जब वो अंदर घुसना चाह रहे थे तो उनके जो मठ के जो हेड थे उन्होंने कहा कि कुंज बिहारी प्रभु ने, कुंज बिहारी प्रभु बेसिकली भक्ति सिद्धार्थ महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी थे और उस समय मैनेजमेंट में काफ़ी हाई लेवल पर थे, तो उनका उनकी तरफ से मैसेज आया है कि आपको टेम्पल में एंट्री ना मिले और अगर आप प्रवेश करना भी चाहते हैं तो फिर उनको ये मैसेज दिया गया कि उनको संन्यास वेश छोड़ना पड़ेगा और वापस ब्रह्मचारी के वेश में आना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का इंस्ट्रक्शन है ये उनके थ्रू। तो वो एकदम गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया उनको। तो फिर वो भक्त बोला उस सन्यासी से कि मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे 15 साल हो गए हैं और 15 साल के बाद भी आप मेरे साथ ऐसा करोगे कि मुझे आप अंदर नहीं आने दे रहे मंदिर में। तो भक्त ने कहा कि 15 साल के बाद भी अगर आपकी ये हालत है तो मुझे तो बहुत इनसिक्योर महसूस हो रहा है कि 15 साल के बाद भी आपकी ऐसी हालत है कि आप क्रोधित हो रहे हैं और आप बिना बताए चले गए हैं, तो मुझे बड़ा इनसिक्योर महसूस हो रहा है अपने बारे में जब मैं सोच रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर का ऑर्डर है, ये उनका ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये संन्यास वेश छोड़ना पड़ेगा और वापस आप ब्रह्मचारी वेश में ही मठ में रहेंगे। तो जीवन के अंतकाल तक जो है भक्ति सिद्धांत महाराज के जाने तक वो ब्रह्मचारी वेश में ही थे। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेटअप कर दिया था कि कोई गलती से भी भूल के जो है बिना बताए नहीं जाएगा। तो ये भी कंपैशन है, ये भी दया है। दया कई तरह की दया होती है, किसी की उंगली में फोड़ा है, एक तो फूंक मार दो, एक फोड़े को काट दो, नहीं काटेंगे तो जहर फैल जाएगा, पस फैल जाएगा। बोलते हैं अगर चेहरे पर अगर पस आ जाता है, अगर चेहरे मान लीजिए अगर स्वेलिंग है कुछ और उसमें पस जम जाता है, अगर उस पस को नहीं निकाला जाएगा तो कई बार वो पस ब्रेन में चला जाता है और अगर पस ब्रेन में एक बार चला गया तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, इतना डेंजरस होता है। तो इसलिए उसको निकालना ही अच्छा होता है, ये दया है। तो इस तरह से कंपैशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि माफ कर दिया जाए, लेकिन कंपैशन का अर्थ ये भी होता है कि कई बार सजा भी देनी पड़ती है तो उससे भी जो है फिर करेक्शन होता है। लेकिन चैतन्य शिक्षा व्रत में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है और लिखा है कि अपराधियों को दंड देना कोई गलत नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन उससे हायर प्रिंसिपल है उनको माफ कर देना। ये भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है चैतन्य शिक्षा व्रत। तो इसलिए कई एंगल से देखना पड़ता है किस भक्त के लिए किस भक्त के लिए क्या डोसेज है, किस भक्त के लिए क्या ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, किस भक्त के लिए कितने डिग्री की दवाई देनी चाहिए। तो ये तो जो गुरु हैं वैष्णव हैं वो ही एसेस कर सकते हैं। कुछ भक्त लोग बहुत डाइजेस्ट कर सकते हैं तो उनको हो सकता है कि थोड़ा हाई डिग्री का ट्रीटमेंट देना पड़े। कुछ लोग डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं कि डांट पड़ने में गायब भी हो जाएंगे 2 मिनट में, तो उनको उस तरह का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जो भी है, कहने का मतलब है कि जो भी सुधार होता है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि आइडिया ये होना चाहिए कि भक्त को इस तरह से सुधारा जाए कि वो फिर से भक्ति कर सके और फिर से वो सेवा में लग सके, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिजेक्ट ही कर देंगे टोटली ऐसे भक्त को, तो आशा यही है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कोई रहने का स्थान होगा नहीं। अगर गुरु ही शिष्य को रिजेक्ट कर देंगे तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए दोबारा भक्ति में लगना। जैसे आप देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी एक और आइडियल एग्जाम्पल है इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बाद जब रामचंद्रपुरी आए, उस समय श्रीपाद माधवेंद्रपुरी रेमुणा में थे, जीवन के अंतिम समय में थे और राधाणी का जो भाव है, विरह का भाव है, प्रकट कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और कृष्ण प्रेम में वो अश्रु बहा रहे थे, और ऐसे में रामचंद्रपुरी वहां पहुंचे। तो रामचंद्रपुरी जब वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि श्रीपाद, आप अगर दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, आप दिव्य आनंद की अगर अनुभूति कर रहे हैं तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? अगर आप निर्विशेष ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म का आपको ध्यान लगाना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं अगर आप दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं? तो इस प्रकार प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, क्योंकि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, जो ब्रह्म भूत स्थिति में होता है वो ना शोक करता है ना वो आतुर होता है, लेकिन अगर आप ब्रह्म भूत स्थिति में हैं तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? तो इस प्रकार जब उन्होंने अपने गुरु को इंस्ट्रक्शन देना चाहा और गुरु में फॉल्ट देखा उन्होंने, तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने एक ही लाइन बोला, गेट आउट यू सिंफुल रास्कल। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन इस तरह से किया, गेट आउट यू सिंफुल रास्कल, है ना, कि धूर्त अगर तुम्हारा चेहरा देकर मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ा तो सदगति प्राप्त नहीं हो, निकल जाओ यहां से, गेट लॉस्ट। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने प्रैक्टिकली रामचंद्रपुरी को रिजेक्ट कर दिया, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों को रिजेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे जब शिष्य होते हैं जो पूरे वैश्य समाज के लिए जहर बन जाते हैं और लोगों के लिए भी दुष्कर हो जाता है उनका जीना, तो ऐसे सो कॉल्ड भक्तों को वैश्य समाज से त्यागना ही अच्छा रहता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, उनको रिजेक्ट ही कर दिया रामचंद्रपुरी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु के बाद जब गए, चैतन्य महाप्रभु महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु को देखकर क्या बोला रामचंद्रपुरी ने, ओ आप तो सन्यासी हो, इतना सारा महाप्रसाद पा रहे हैं आप, आपको इतना नहीं लेना चाहिए सन्यासी होकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं, हम सर्वस्व प्रभु, है ना, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण, जानते नहीं हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं से बात कर रहे हो आप। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं कहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये तो बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला चैतन्य महाप्रभु ने, और उसके बाद उन्हें अपने जो भक्त थे पार्षद थे उनको बोला कि आगे से मुझे इतना प्रसाद नहीं देना, प्रसाद आधा कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गंभीरता से ये बात उन्होंने बोले, उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, यहां पर आकर दोष देख रहा है महाप्रभु में दुष्ट। तो चैतन्य महाप्रभु का नहीं, ये मेरे गुरुतुल्य हैं, मेरे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, है कि नहीं, श्रीपाद ईश्वरपुरी के ही गुरु भाई है रामचंद्रपुरी, और ये मुझे कह रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, बात सही तो है कि मैं सन्यासी हूं मुझे इतना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल बोल के चुप हो गए। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु की महानता है कि चैतन्य महाप्रभु एक शब्द नहीं बोला, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद आधा कर दिया, फिर से रामचंद्रपुरी वहां पहुंच गया, उन्होंने कहा अरे ये तो शुष्क वैराग्य है, है ना, जगन्नाथ जी का प्रसाद और इतना सा, ये तो आप जगन्नाथ जी प्रसाद की अवहेलना कर रहे हैं, ये तो शुष्क वैराग्य है। तो तब भी नहीं छोड़ा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, तब भी चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रमशः क्या हुआ, रामचंद्रपुरी पूरे वैष्णव समाज से जो है निष्कासित हो गए। तो ये परिणाम होता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए वैष्णव सहन भी कर ले, अगर हम बार बार गलतियां करेंगे बार बार अपराध करेंगे तो माया फिर अपने आप ही हमारी व्यवस्था करेगी। जिस तरह से रामचंद्रपुरी के साथ हुआ कि उन्होंने गुरुदेव को नहीं छोड़ा, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा और बाद में खुद ही नहीं बचे, तो ऐसा भी होता है कि फिर माया की जब लात पड़ती है तो वो फिर सुधार बड़ा अच्छा सुधार होता है। तो इस तरह से वैष्णव की डांट खा लें या फिर माया की डांट खाएं, कौन सी डांट खानी है बताइए आप, हमें से कितने वक्त तैयार हैं वैष्णव की डांट खाने के लिए, और कितने वक्त तैयार हैं पहले बताइए, कितने वक्त तैयार हैं वैष्णव की डांट खाने के लिए, तो आज से आपको डांट पड़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, हमें से कितने वक्त हैं जो माया की डांट खाना चाहते हैं, माया की डांट है आप टीवी के सामने बैठ जाओ फिर उसके बाद लगे रहो दिन रात घरे की तरह काम करो, और वहां पे भी आपको लताड़ते रहेंगे लोग, आपका शोषण करेंगे, प्रकृति आपका शोषण करेगी, फिर 84 लाख योनियों में भ्रम भ्रमण करेंगे, बहुत सारी यात्राओं को सहन करना पड़ेगा। आप भक्तों को सहन करेंगे तो अंतिम में भक्त लोग, यही भक्त जो आपको डांट रहे हैं, आके आपके मुंह में राधा कुंड का जल देंगे, आपके माथे पर तुलसी रखेंगे, आपको महामंत्र का कीर्तन सुनाएंगे, आपको उच्चिष्ट महाप्रसाद देंगे ठाकुर जी का, और हो सकता है आपको ब्रज का दर्शन भी करा दें। लेकिन अगर आप माया को सहन करोगे तो अंत में कई लोग खड़े होंगे जो आपसे विल साइन कराना चाहेंगे, आपकी चाबी लेना चाहेंगे, आपका पांव पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, आपका अंतिम समय भी आपका शोषण होगा, परिवार वाले रिश्तेदार सब मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, लेकिन उद्देश्य ये होगा कि कैसे आपकी संपत्ति हड़प ली जाए, और अगर वृद्धावस्था में पहुंच गए तो हो सकता है कि आपको ओल्ड एज होम में डाल दिया जाएगा और शोषण के लिए, इतनी बुरी हालत है। हम जानते हैं एक भक्त थे और उनके जो सुपुत्र थे या उनकी डॉटर थी और उनके हस्बैंड, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड वो रहते थे अमेरिका में, वो भक्त नहीं थे, ये भक्त थे। तो ये जीवन के अंत काल में थे और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा उन्होंने और इंडिया छोड़ के अमेरिका चले गए थे, उनको अकेला छोड़ के, वो बेड रिडन हो चुके हैं, उनको छोड़ के अकेला छोड़ के जो है अमेरिका चले गए और जीवन के अंत काल तक जो है नहीं पूछा उनके बारे में। उनके मरने के बाद वापस आए पूछताछ करने के लिए कि क्या हुआ था हमारे पिताजी का। आप सोच के देखिए बहुत बुरी हालत है, आज तो इतनी बुरी हालत है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए अच्छा यह है कि वैष्णव कैसे भी हो, भक्त कैसे भी हो, भले वो दया से डांट रहे हो या द्वेष के कारण डांट रहे हो, सारी डांट सुनने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। कई बार बोल सकते हैं कोई भक्त, प्रभु जी आप तो कह रहे हैं दयावश डांटते हैं, लेकिन कई भक्त तो द्वेष के कारण डांटते हैं। तो ठीक है, वो अगर द्वेष के कारण भी डांट रहे हैं ऐसी डांट भी हमें सुन लेनी चाहिए, और दया के कारण भी डांट रहे हैं तो ऐसी डांट भी सुन लेनी चाहिए, माया की डांट से तो फिर भी बहुत अच्छा है। इसलिए भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे होई यही अभिलाष। तो यही अभिलाषा करनी चाहिए कि वैष्णव का जो संघ है, भक्तों का संघ किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। और वृंदावन दास ठाकुर जिस तरह से लात मारने के लिए तत्पर हैं, तो उनसे प्रार्थना करें कि आज के दिन हमारे माथे पर लात मारें, हम सबके माथे पर लात मारें, ताकि हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो। नहीं तो अनर्थ तो निकल ही नहीं रहे इतने जन्मों तक, इतने सालों तक, जब करते करते हद हो गई, लेकिन अनर्थ तो निकल ही नहीं रहे हैं। तो हमें तो ऐसी लात की बहुत आवश्यकता है, वृंदावन दास ठाकुर की लात आज के दिन पड़ जाए मजा आ जाए। हो सकता है गुरु परंपरा के माध्यम से लात पड़ जाए तो वो भी बड़ा अच्छा है। तो इस प्रकार हमें याद है, एक बार एक घटना और बताएंगे। एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी, रथ यात्रा के दिन महाराज सदा एक ही बार किसी को चांटा मारा होगा, हमने देखा है आंखों से। एक भक्त थे, रथ यात्रा अगले दिन थी वहीं पे पुरानी दिल्ली में, और जैसे रात रथ को निकलता है पहले से रात को भेज देते हैं ना रथ को, ताकि सुबह सुबह पहुंच जाए और फिर रथ यात्रा के लिए सारी तैयारी हो। तो रथ निकला गेटर क्लास के एरिया से निकला, मूलचंद होता निकला, रास्ते में जो है पहिया खराब हो गया, उसका ब्रेक खराब हो गया, पता नहीं क्या खराब हो गया, और रथ वहीं खड़ा रहा। और अगले दिन जो है करीब 1 बजे वहां पहुंचा रथ, 1 बजे पहुंचा। फिर उसके बाद भक्त लोग वहां इंतजार कर रहे थे, एक नहीं दिया बल्कि लेट पहुंचा, 2 बजे पहुंचा। और कुछ जीबीसी को इनवाइट किया था महाराज ने, कुछ सीनियर डिवोटीज भी आए थे, प्रभुपाद डिसिपल्स भी आए थे, और सारे गेस्ट डिवोटीज भी आए थे। तो महाराज ने पूछा ये सब क्या है, रथ अभी क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि रथ रात को खराब हो गया था इसलिए अभी अभी हम पहुंचे हैं। तो महाराज को बहुत गुस्सा आया कि रथ लेट आया। महाराज ने उठा के हाथ था कि सीधा मारा चांटा उसके फाट कर गए। वो पहली और आखिरी बार महाराज ने किसी को मारा होगा जिंदगी में, हमने आज तक किसी को हमारे हाथ उठा के देखा। तो उसके बाद अगले दिन जो है वो भक्त बोला, कल तो महाराज जी की बड़ी कृपा हो गई, 5 उंगलियां छप गई। तो फिर भक्त ने बताया कि क्या हुआ कि रथ खराब हो गया था और रथ बड़ा लेट पहुंचा था। तो ये होता है वैष्णव कृपा होती है, बड़े ही भाग्यशाली ऐसे भक्तों को ये कृपा मिलती है, ऐसे कृपा मिलती है, है ना। खैर आजकल तो महाराज बहुत अति दयालु हैं, कृपालु हैं, किसी को ज्यादा कुछ कहते भी नहीं है। तो हमें लेकिन दया का क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे जो है बहुत दयालु हैं, हमें बार बार क्षमा कर देते हैं, इसलिए हम गलती भी करेंगे कुछ तो फिर क्षमा हो जाएगा, इसलिए हम गलती करते रहेंगे। ऐसे है ना, नाम के बल पर अपराध करना या नाम के बल पर पाप करना, तो इसी तरह से हो जाएगा फिर। क्या कोई बात नहीं, गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं हमारे, हम गलती भी करेंगे तो माफ कर देंगे, फिर से गलती कर लो, फिर से अपराध कर लो, फिर से गलती कर लो, फिर से नियम तोड़ लो, तो ये लंबा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद फिर वो जो आपका जो फाइल है फिर वो माया के पास चला जाएगा। तो इसलिए अगर गुरुदेव जो हैं अगर दया दिखाते भी हैं, उस दया का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमें समझ जाना चाहिए कि गुरु इतने प्रेम वर्ष इतने स्नेह से हमें बता रहे हैं, तो हमें इसको बड़ी गंभीरता से लेना। एक बार एक भक्त जो है वो मैनेजमेंट में था, तो वो भक्तों को बहुत डांटा करता था। तो फिर महाराज ने उसको बुला के समझाया। महाराज ने कहा कि आप, हमें सुना कि बहुत गुस्सा होते हो आप भक्तों के ऊपर। तो महाराज ने कहा कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और लेकिन ये अच्छा नहीं है आपका एगो कि आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आप भक्तों को प्रेम से समझाइए। तो उन्होंने कहा कि महाराज प्रेम से कोई मानता ही नहीं है, जब तक डांटे नहीं कोई सुनता ही नहीं है। तो महाराज ने कहा कि हो सकता है कि शुरू में आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन एक दिन उनको खुद एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा रास्कल हूँ कि प्रभु जी इतने प्रेम से समझाते हैं फिर भी मेरे को अकल नहीं है, मैं समझता नहीं। फिर महाराज ने एक उदाहरण दिया विष्णुचंद स्वामी का, जो लॉस एंजेलिस टेम्पल में एक लीडर थे। तो उन्होंने कहा कि विष्णुचंद स्वामी बहुत इस बात के लिए, उनकी मधुरता के लिए और भक्तों से प्रेम के साथ व्यवहार करने के लिए माने जाते थे, कि भक्तों से बहुत प्रेम से बात करते थे, इसलिए भक्तों बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो इसलिए हम लोगों को आज के दिन वृंदावन दास ठाकुर से कृपा की याचना करनी चाहिए, और जिस तरह से डांट पड़ी वृंदावन दास ठाकुर की, इस तरह से डांट हमें भी पड़े, हमें भी लात और घूंसा पड़े, ताकि अनर्थों की निवृत्ति हो जाए जल्दी। हरे कृष्ण। इसमें महाराज ने कुछ दिया है, मैं थोड़ा इसमें से भी पढ़ के सुना देता हूँ। यस महाराज।
वृंदावन दास ठाकुर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है।
He says that in the future, a Vedic Vyas will come and he will elaborate on the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
उन्होंने कहा है कि भविष्य में व्यासदेव आएंगे और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को और विस्तार से बताएंगे।
So we should understand that he, in another way, he is predicting the advent of Srila Prabhupada and how Prabhupada would produce these prolific literatures glorifying the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu.
तो एक तरह से अगर इसको समझा जाए, वृंदावन दास ठाकुर श्रीला प्रभुपाद के आविर्भाव की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वे इतनी पुस्तकों का अनुवाद करेंगे।
And in his purport to Chaitanya Bhagavat, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes that the acharyas who elaborate on the leela of the Lord and explain the leela of the Lord, they are none different from Shri Vyasadeva. They are, you could say, carrying the mantle, you know the word mantle? They are carrying the legacy of Srila Vyasadeva, though they are not direct incarnations, but they are carrying the Shakti, they are carrying the legacy.
Bhakti Siddhant Saraswati Maharaj Ji, Chaitanya Bhagavat ke ek tatparya mein likhte hain ki jo acharya, jo bhakt, भगवान की लीलाओं को समझाते हैं, उस पर विस्तार से इसका वर्णन करते हैं, तात्पर्य देते हैं, वह व्यासदेव के रूप में ही उन्हें देखना चाहिए कि एक तरह से वे उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
At the end of that quotes I've given you there, you will find what Krishna Das Kaviraj Goswami has to say about Vrindavan Das Thakur. It's very important. The mood of Krishna Das Kaviraj Goswami in relationship to Vrindavan Das Thakur. Those quotes, do you see where those quotes are there? At the end, I patched them in. Is that plugged in?
Yeah.
It's plugged in? The computer's plugged in?
This one, by the nature of all the activities of Chaitanya Mahaprabhu are very wonderful and sweet. When they are described by Vrindavan Das Thakur, they become like a shower of nectar. Therefore, I very humbly submit that since this incident has already been nicely described by Vrindavan Das Thakur, I would be very proud to repeat the same thing, and this would not be very good. I do not have such powers. I am therefore presenting only a synopsis of those events already described elaborately by Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Mangal, now known as Chaitanya Bhagavat. Some of the incidents he did not describe elaborately but only summarized, and these I shall try to describe in this book. I thus offer my respectful obeisance to the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. I hope that I will not offend his lotus feet by this action. He has described these pastimes in many places in Chaitanya Bhagavat. I request my readers to hear that book, for that is the best evidence. I have described the pastime very briefly, for it is impossible for me to describe them full. In future, however, Vedvyas will describe them elaborately. In Chaitanya Mangal, Srila Vrindavan Das Thakur has stated in many places the factual truth that in the future Vyasadeva will describe the Lord's pastime elaborately. The statement Age Vyas Koribe Varnane is similar to text in his Chaitanya Bhagavat, in which Vrindavan Das Thakur says, unlimited pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu will be described by Vyasadeva in the future. Srila Bhaktisiddhanta Thakur says that these statements indicate that in future other representative Vyasadeva will elaborately describe Lord Chaitanya's pastime. The purport is that any pure devotee in the disciplic succession who describes the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu is confirmed to be a representative of Vyasadeva. The ocean of nectarine pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu is like ocean of milk. According to this thirst, Vrindavan Das Thakur filled his pitcher and drank from that ocean. Whatever remnants of milk Vrindavan Das Thakur has given me are sufficient to fill my belly. Now my thirst is completely satiated. I am a very insignificant living being, like a small red beaked bird. Just as such a bird drinks the water of the sea to quench its thirst, so I have touched only a drop of the ocean of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastime. From this example, you may all understand how expansive are the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
The mood, main thing we should get, the mood of Krishna Shankar Goswami in relationship to Vrindavan Das Thakur, whom he clearly considered to be his superior.
Krishna Das Kaviraj Goswami ka Srila Vrindavan Das Thakur ke saath kis prakar ka sambandh hai aur kis prakar ka bhav hai, ye bahut hi mahatvapurn hai. Ve Vrindavan Das Thakur ko nischit roop se apne varishth ke roop mein le rahe hain.
We have to get, just like you're putting so much emphasis on proper behavior of a disciple upon getting the mercy of Guru in the form of chastisement, you presented a whole case here very nicely.
जिस प्रकार आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि एक शिष्य का किस प्रकार से भाव होना चाहिए अपने गुरु की कृपा को स्वीकार करने का.
So similarly from the language, the beautiful and poetic, sweet and thoughtful language of Krishna Das Kaviraj Goswami, we see what is Vaishnava etiquette.
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से इतने काव्य रूप में, इतने मधुर रूप में वे भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि एक वैष्णव क्या है.
He says, I hope that Vrindavan Das Thakur will not be offended that I dare to comment on the Leela of Mahaprabhu after him. So this we see humility here, perfect. Perfection of Vaishnava humility. I mean, it's not fake, you know. That's not just what style. That is from the heart.
तो जो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस कार्य से वृंदावन दास ठाकुर इसको अपराध के रूप में नहीं लेंगे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये लीला उनकी प्रकाशित कर रहा हूँ. तो ये सब कुछ बनावटी नहीं है, ये उनकी भाषा हृदय से आ रही है.
So he says, I'm just taking the remnants from the nectar, that milk ocean, nectar left by Vrindavan Das Thakur. I'm just taking a few drops only. This is so first class, very nice.
Krishnadas Kaviraj Goswami keh rahe hain ki jo Vrindavan Das Thakur ne jo itna amrit ka samudra choda hai, main usme se sirf ek boond le raha hu.
So instead of being puffed up, we have to understand from this is real Vaishnavism. This is what a Vaishnav really is. This is how a real Vaishnav talks. This is how real Vaishnava behaves. We've got to get that point.
हमें इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार ऐसे एक जो वास्तविक वैष्णव होता है, ऐसे वह वाणी बोलता है.
So we are more or less the shadow of real Vaishnavas, more or less. But even in the shadow, by the mercy of Prabhupada, there's so much potency even in the shadow. You know, but we cannot claim that we have become first-class Pukka Vaishnava. Then that is rubbish. We can't claim like that.
और हम सब की स्थिति तो हम तो एक वास्तविक वैष्णव की परछाई के रूप में ही हैं, परंतु प्रभुपाद जी की कृपा के कारण उस परछाई के समान होने पर भी इतनी शक्ति है.
So actually in the new future with this training like what Rukmini Krishna Prabhu and you just went to this training for advanced, super advanced training for super advanced devotees. You went also? Oh, you didn't go. Oh no. But Rukmini Krishna Prabhu went to this, you could call it postgraduate training for senior devotees. This is what the GBC is doing now. It's awesome. It's awesome. Exactly what Prabhupada wants.
और अभी हम देखते हैं जिस प्रकार से GBC जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं उनके लिए इतने अच्छे प्रशिक्षण प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं. यही है वास्तविक रूप में जो श्रीला प्रभुपाद चाहते थे.
And more and more in ISKCON we're going to see very senior men. Now the GBC is discussing even how gurus have to go back for training. It's a very hot topic. If you want to know what the hot topic is, it's flaming hot. Is to go see. Even gurus are going to be asked to go back for training. This is a fact. I'm privy to it at these strategic planning conferences. This is, they're serious about this, you know. About even top men and some women also eventually going back for retraining.
और अभी ये चर्चा की जा रही है जीबीसी में कि किस प्रकार से अभी गुरु को भी वापस कोई प्रशिक्षण प्रोग्राम्स उनके लिए भी होने चाहिए और कोई वरिष्ठ भक्त है उनके लिए भी प्रशिक्षण प्रोग्राम होने चाहिए.
This was headed by Bhakti Bringa Bhagavatam Swami. He headed up the this super advanced training program.
और His Holiness Bhakti Brihad Bhagavat Maharaj ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था.
So more and more what we're going to see, Mohanji, what we're going to see more and more is, a part of this training is in-depth, what's the word, I'd almost say grueling, you know, but you know the word grueling? In-depth, grueling study of Vaishnava relations between the saints. We must know how to behave properly. We do not know. We are, I mean, I have an excuse supposedly, ha ha ha, and I come from the Malaysian stock, but then you Indians no excuse.
तो इसको बहुत ही विस्तार से हमें सीखना समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक वैष्णव आपस में आदान प्रदान करते हैं.
So this Krishna Shravas Goswami and Vrindavanadas Thakur, this is only one out of thousands of examples.
तो यहाँ पे जो उदाहरण बताया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर के इनके संबंध का ये हजारों उदाहरणों में से सिर्फ एक उदाहरण है.
Other examples we see in Srinivas Acharya, Narottamadas Thakur, Shamananda Prabhu, they were Siksha God brothers. They were not Diksha God brothers. They were sent by their Diksha gurus. And all this is very deep significance. They were sent by their Diksha gurus. All of them were sent to Jiva Goswami to study. Because, and another etiquette issue here, you see, this is what we're going to be studying, I'm telling you. What we're going to be studying to become Vaishnava, then we will study hardcore. These specific points of Vaishnava etiquette, we will be studying in depth. Never mind, I've been 44 years devotee, never mind. We must study these things and present the manuals and get this straight, what is it mean to be a Vaishnava. Then we will teach like this.
Dusra udharan hum dekhte hain Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur, Shyamanand Prabhu ke aapas ke sambandh mein. Ve sab shiksha guru bhai the. Halanki ve alag alag guru ke dwara bheje gaye the. To inke aapas ke sambandh ko hume bahut vistar se samajhna hai aur isi ko seekhna hai.
See, exceptional love, affection, sweetness between Krishna, between Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, like that, you know, we see exceptional sweetness. And even more, and yet another lesson in that group, yet another lesson in.
और यहाँ पे हम देखते हैं उनमें आपस में इतना प्रेम स्नेह और मधुरता थी उनके संबंधों में और यहाँ पे एक और हमें शिक्षा मिलती है.
Narottam Das Thakur's beloved friend, Ramachandra Prabhu.
नरोत्तम दास ठाकुर के प्रिय मित्र रामचंद्र प्रभु.
His name is mentioned in the Jayananavu Premadana prayers that when the departure of Ramachandra Prabhu was heartbreaking for all the Vaishnavas.
Ramchandra Prabhu ka tirubhav sabhi Vaishnavas ke hriday ko bahut cheer karne wala tha.
I believe he was disciple of Srinivasacharya, isn't it? Disciple of Srinivasacharya. He was a disciple in that group.
Ve Srinivas Acharya ke shishya the.
Pandaji, where's it? He's not here. Anyways, that it was not his disciple. The disciple of a Siksha god brother was his best beloved friend. And then when he left, and then all the other remaining Vaishnavas, one after another, they couldn't take it, and then they left. So here we see the intensity of love. This is what we have to get.
तो यहाँ पे हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिक्षा भाई हैं श्रीनिवास आचार्य उनके शिष्य थे रामचंद्र प्रभु तो उनमें आपस में इतना प्रेम था.
थैंक यू वेरी मच हरि बोल.
हरि कृष्ण. थैंक यू. और कोई प्रश्न? एक बस.
हरे कृष्ण दरोत्तम प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया. तो प्रश्न ये था मेरा कि कई बार हम लोग देखते हैं जैसे आज क्रोध के ऊपर ही टॉपिक था कि कई बार क्या होता है प्रश्न मेरा ये है कि क्रोध कौन किसके ऊपर कर सकता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इक्वल लेवल पर भी क्रोध होता है और कई बार जूनियर सीनियर के ऊपर भी क्रोध कर जाते हैं क्योंकि सीनियर्स का तो मालूम है उनके पास राइट्स हैं कि वो अपने शिष्य को या अपने जो जूनियर हैं उनको समझाने के लिए. तो मतलब हम जैसे लोग मतलब मेरे लिए आप थोड़ा सा गाइड करें.
अगर एक्चुअल वैष्णविज्म अगर आप देखें तो कोई भी अगर आपको डांट रहा है करेक्ट कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो मेरे सुधार के लिए कर रहा है भले वो जूनियर हो इक्वल हो या मुझसे सीनियर हो. अगर कोई मुझे करेक्ट कर रहा है तो मुझे ये लेना चाहिए कि दिस इज कमिंग थ्रू कृष्णा और मेरे सुधार के लिए कहा जा रहा है तो वो सीनियर होगा या जूनियर होगा या इक्वल होगा ये सेकेंडरी है कि नहीं. हम इस वजह मेरा जूनियर है तो मुझे कैसे डांट रहा है ये भी एक ईगो का प्रॉब्लम है. आप समझ रहे हैं और मेरा इक्वल है मुझे कैसे डांट रहा है ये भी एक ईगो का प्रॉब्लम है. तो जब कोई डांट रहा है कोई करेक्ट कर रहा है तो हमें यही सोचना चाहिए ये मेरे सुधार के लिए कर रहा है और ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जो मिल रहा है मुझे इट इज़ कमिंग फ्रॉम कृष्णा थ्रू हिम. तो इस तरह से कोई भी हो अगर मुझे बता रहा है मेरी कमी बता रहा है मेरे अच्छे के लिए बता रहा है दैट इज़ ह्यूमिलिटी. ठीक है. श्रील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय.